इधर उधर की तू बात ना कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه, ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे अहकामात जो हैं, ये हकीमाना हैं, ये हिकमत की बातें हैं, और इन बातों को जो है वो वही के जरिए जो है वो बताया गया है। इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि ये जो बातें हैं जिनको करने का हुक्म दिया गया है और जिनसे मना किया गया है, ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही की हैं। और कैसे अहले मक्का ये कहते थे कि ये कुरान जादू है, ये शायरी है। वला तजअल माअल्लाहि इलाहन आखरा, और देख अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद ना बना। फतुल्का फी जहन्नमा मलूमन मधूरा, और तू डाल दिया जाएगा जहन्नुम में। मलूमन इसका रूट है लाम वाव मीम, मलामत ज़दा, मधूरा दाल हा रा मधूरा, और इसके मानी है धकेला हुआ, रांदाए दरगाह, जैसे किसी को जो है रहमत से महरूम कर दिया जाए, धुतकार दिया जाए, दूर कर दिया जाए। तो देखें कि इन ये जो बातें हैं जो भी आपने पढ़ी, ये जो तुरात के अहकामात, तुरात का खुलासा है, और यहाँ आयत नंबर आपने 23 से इनको पढ़ना शुरू किया था, उनकी इब्तदा भी तौहीद से हुई थी, और एंड जो है ये भी तौहीद पर ही किया गया है कि शिर्क नहीं करनी, और जो लोग भी शिर्क करेंगे तो जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। कैसे? मलूमन, मलामत ज़दा होकर, खुद ही वो मलामत कर रहे होंगे कि हमने कैसा गुनाह किया था। बदहूरा, दुत्कारे में होंगे ये लोग, अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे। फिर आप देखिए कि जो आयत नंबर 40 है, यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि अफा असफाकुम रब्बुकुम बिल बनीना वत्तखज़ा मिनल मलाइकति इनासा। अफा अस्फाकुम, इसके मानी है कि क्या तुम्हें चुन लिया रब्बुकुम तुम्हारे परवरदिगार ने बिल बनीना बेटों के लिए। अफा अस्फाकुम जो है आ क्या फा पस, और अस्फाकुम जो है इसका रूट है स्वाद फा वो, किसी चीज को मुंतखिब कर लेना, चुन लेना, छांट लेना, उसकी पाकीजगी की वजह से, उसकी तहारत की वजह से। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछ रहे हैं कि कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों के लिए चुन लिया कि बस तुम्हारे पास बेटे होंगे, वत्ता खजा मिनल मलाइकाति इनासा, और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां जो है वो बना लिया। इन्नकुम लतकुलून कौलन अजीमा, बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जबानों से निकालते हो। तो वो क्या करते थे? वो ये कहते थे कि फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं, और वो समझते थे कि इनके जरिए से वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर चुक सकते हैं। तो यहां पर जो है उनके जो मुशरिकाना अकीदा था, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बातिल है, ये नकारा है, और ये बात जो है ये गलत है। फिर आप देखिए के आयत नंबर 41 है, फरमाया शिर्क की तरदीद की आयत नंबर 40 में, और आयत नंबर 41 जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि हमने कुरान में तौहीद के दलाइल दिए हैं और शिर्क को रद्द किया है तरह तरह से, शायद कि लोगों को समझ आ जाए। वलकद सर्रफना, सर्रफा युसर्रिफू, फेरना, गर्दिश जो है वो करना, और हमने जो है क्या किया कि हमने तरह तरह से बयान किया, फी हाजल कुरानी, इस कुरान में। तो हमने तौहीद का जो सबक था लोगों को तरह तरह से कुरान में समझाया, शिर्क से तरह तरह से उनको मना किया। लियज़्ज़करू, ताकि वो होश में आए। यज़क्करु ताकि वो नसीहत हासिल करें, वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा, मगर क्या हुआ कि जितनी नसीहत अल्लाह ने उनको की तो ये जो नसीहत थी, वमा यजीदुहुम, और नहीं ज्यादा करता इनको इल्ला नफूरा मगर नफरत में। तो ये नसीहत जो थी, ये जो कुरान की आयात थी, इसकी वजह से ये हक से दूर होते चले गए, इनकी नफरत में इजाफा होता चला गया। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, लव काना माहू आलिहातुन, कि अगर जो है वो इनके साथ माबूद होते, कमा यकूलूना, जैसा कि ये लोग कहते हैं, क्योंकि अहले मक्का का ये दावा था कि इनके जो है वो माबूद हैं, और वो कहते थे कि इन माबूदों के जरिए वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी को रद्द किया जा रहा है कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते, जैसे कि इनका दावा है कि लव काना माहू आलिहातुन, के अगर अल्लाह के साथ दूसरे शरीक होते, कमा यकूलूना, जैसा कि ये लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि और माबूद हैं, इज़न तब तो लब तगऊ जो है इसके मानी क्या है कि बगा यबगी, इसके मानी होते हैं चाहना। तो ये कोशिश करते, तलाश करते, ये हासिल कर लेते, जरूर ढूंढते, इलाजिल अर्शी सबीला, मालिक अर्श की तरफ कोई रास्ता, तो ये मालिक अर्श तक पहुंचने के लिए जरूर कोई रास्ता जो है वो तलाश कर लेते। इलाजिल अर्शी सबीला, तो अल्लाह की तरफ पहुंचने का कोई रास्ता ये तलाश करते। तो इसके मानी ये हैं कि इनके माबूद जो है इनकी कोई हकीकत नहीं है, और अल्लाह उन बातों से पाक है जो ये बातें करते हैं, और अगर ऐसा होता तो फिर वाकई ये अल्लाह का जो है वो अपने माबूदों के जरिए कुर्ब हासिल करते, अल्लाह का, अल्लाह जो कि अर्श का मालिक है उस तक इनकी रसाई होती। सुबहानहू, अल्लाह पाक है, किस चीज से जो ये शिर्किया बातें करते हैं, व तआला, और बहुत बुलंद है, अम्मा यकूलूना, जो ये बातें कहते हैं, उलूवन कबीरा, बरतर है, बहुत बड़ा है। तो इनकी जो शिर्किया बातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे बहुत बाला और बरतर है। तो ये जो आयत नंबर 41 से 43 तक तौहीद का इस्बात है, शिर्क को रद्द किया जा रहा है, और अब जो है ये जो तौहीद का इकरार है और अल्लाह की जो बंदगी है, अब इसकी मिसाल कायनात से दी गई। फरमाया, तुसब्बिहू लहु समावातु सब्वल अर्द, के अल्लाह की पाकी तो सातों आसमान और जमीन जो है वो बयान कर रहे हैं, वमन फीहिन, और जो आसमानों जमीन में है, यानी कायनात का जर्रा जर्रा, उसकी हर चीज अपने पूरे वजूद से इस हकीकत पर गवाही दे रही है कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही परवरदिगार है, और अल्लाह जो है वो हर नक्स और ऐब से पाक है, और अल्लाह की खुदाई में कोई उसका शरीक नहीं है। तो ये जो पाकी बयान करना है, तस्वीर बयान करना है, इसके माने क्या है कि अल्लाह के मुती होना है। अब आप देखें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हमने पहाड़ों को दाऊद के ताबे कर दिया, बस वो शाम को और सुबह को उसके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो पहाड़ क्या करते थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। इन्ना सखरनल जिबाल माहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, सूरत स्वाद आयत 18। फिर इसी तरह आप देखें कि पत्थरों के बारे में आप सूरत अल बकरा आयत 74 में पढ़ चुकी हैं, वह इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, के पत्थर अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बाद सहाबा बयान करते हैं कि वो रसूल अल्लाह के साथ खाना खा रहे थे कि उन्होंने खाने से तस्बीह की आवाज सुनी। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। फिर आप देखें एक और हदीस है, और ये बुखारी की रवायत है कि चींटियां अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। फिर इसी तरह ये भी बुखारी की रवायत है कि जिस तने के साथ टेक लगाकर रसूल अल्लाह खुतबा दिया करते थे, जब लकड़ी का मिंबर बन गया और उसे आपने छोड़ दिया, तो बच्चे की तरह इससे रोने की आवाज आती थी। इसे किसने रवायत किया है? बुखारी ने, क्योंकि आपके लिए बकायदा जब मिंबर बना दिया गया तो वो तना, वो दरख्त जो था वो रो रहा था, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको अपने सीने के साथ लगाया तो वो खामोश हो गया। फिर इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्के में एक पत्थर था जो जो है वो मुझे सलाम किया करता था। तो ये सारी आयात और ये हदीस बताती हैं कि नबातात, जमादात, इनके अंदर एक शऊर है मखसूस किस्म का, इंसान उसे समझ नहीं सकता, लेकिन उस शऊर की वजह से वो अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है? तस्वीर के फिर असल मानी क्या है? कि वो सब अल्लाह के मुती हैं, अल्लाह के फरमा बरदार हैं, अल्लाह की अतात करते हैं, आसमान, जमीन और जो कुछ उसके अंदर है। तो इसमें फिर मेरे और आपके लिए क्या पैगाम है? कि आइए हम भी अल्लाह की बंदगी करें, आइए हम भी अल्लाह की अतात करें, आइए अल्लाह के अहकामात के आगे अपने दिल को, अपने सर को, अपने धड़ को, अपने जिस्म को, अपनी कुव्वतों को, अपनी जवानी को, अपने माल को, अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपनी हर चीज को जो है वो पेश कर दें। तो फिर मेरा और आपका काम क्या है? ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे शुक्र से, तेरे जिक्र से, तेरे शुक्र से। यानी हमारा फिर जिंदगी का मकसद क्या बनता है? कि ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी शुक्र से। यानी जो बस हर वो काम करे जिससे अल्लाह की जो है वो बंदगी हो। وَإِمِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ। तो नहीं कोई चीज मगर वो तस्बीह करती है अल्लाह की हम्द के साथ, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि वो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करती है, वَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, और तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। चूंटी कैसे करती है, पत्थर कैसे करते हैं, पहाड़, पानी, लकड़ी और कायनात का जरा जरा अल्लाह की तस्बीह कैसे बयान करते हैं तुम नहीं जानते। ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम इनकी तस्बीह की हकीकत नहीं जानते। कौन जानता है? अल्लाह जानता है। और असल बात क्या है? इन्नहु काना हलीमन गफूरा, वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बड़े ही बुर्दबार है, हलीम है। हलीम का मतलब क्या है? कि इंसान गुनाह करता है, शिर्क करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, और अल्लाह उसको फिर भी जमीन में जीने का मौका देता है, उसको मोहलत देता है, उसको फौरन पकड़ नहीं लेता, उसको फिर भी जीने देता है। ये है अल्लाह की हिल्म और बुर्दबारी, गफूरा। और जब इंसान गुनाह करके अल्लाह की तरफ लौट आता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, अल्लाह उसको जो है वो बख्श देता है। तो ये जो आयात हैं ये हमें दो पैगाम देती हैं। एक तो ये कि हम अशरफुल मखलूकात में से हैं, इंसान हैं, तो हमें अल्लाह की हम्द और सना बयान करनी चाहिए, हमें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, हमें जिक्र करना चाहिए। तो इसमें कल्बी जिक्र भी शामिल है, इसमें जो है लिसानी जिक्र भी शामिल है, और इसमें अमली जिक्र भी शामिल है। और जिक्र की बेहतरीन किस्म क्या है? कि हम जो है वो अल्लाह के मुती बन जाए, अल्लाह की अतात करने लगे। और फिर अल्लाह जो है, इंसान जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसको संभलने का मौका देता है, उसके गुनाहों को माफ करता है, उस पर नेमतों की बारिश करता है, और जो है अल्लाह फिर उसके लिए जन्नत का वादा करता है। वाइजा करात अल कुराना, और जब तुम कुरान पढ़ते हो, जअलना बैनका व बैनल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा, फरमाया कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के दरमियान हिजाब जो है एक पर्दा हायल कर देते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे हिजाब और मस्तूरा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। हिजाब जो है इसके मानी क्या है? हिजाब का रूट है हा जीम बा, ऐसा पर्दा जिससे एक चीज का दूसरी को देखना या उस तक पहुंचना ममनू हो जाए। और कुरान में पर्दे के लिए जो है कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कुरान में पर्दे के लिए 9 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और हिजाब इसका 7वां दर्जा है। जैसे आप भी हिजाब पहनती हैं तो लोगों की नजरें जो है वो आप तक पहुंच नहीं सकती। फिर मस्तूरा का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, मस्तूरा साते से है, सीन तारा सतर करना, इसका मतलब भी होता है कि माने होना, रकावट। जैसे आप सतर का ख्याल रखती हैं तो मस्तूरा जो है इसका मतलब है कि बस वो उसे देख नहीं सकते, वो चीज छुपी हुई होती है। तो जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान जो है वो क्या करते हैं कि एक हिजाब जो है मस्तूरा उसको हायल कर देते हैं, एक हिजाब जो है एक पर्दा जो है उसको डाल देते हैं कि वो एक रुकावट बन जाता है। हालांकि कुरान की तिलावत की जा रही है और कुरान की तिलावत जो है उसके होने के बावजूद भी वो लोग जो हैं वो कुरान के जरिए जो है वो सीखते नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए जब कुरान पढ़ते थे तो अहले मक्का के दरमियान और ईमान लाने वाले और आखरत पर ईमान ना लाने वाले जो अहले मक्का थे उनके दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाता है। तो इस पर्दे की वजह से फिर होता क्या है कि वो कुरान के मकसद को समझ ही नहीं पाते। और फरमाया कि वो कुरान को फिर नहीं समझते क्योंकि पर्दे की वजह से, हिजाब की वजह से वो ईमान ही नहीं लाते। क्योंकि जब वो समझना नहीं चाहते तो कुरान और अल्लाह की किताब जो हदायत है ऐसी चीज नहीं है कि जो ना चाहे तो उसको दे दी जाए। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हम इनके दिलों पर एक अकिन्ना जो है वो चढ़ा देते हैं। अकिन्ना किसे कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुरान में जो है वो पर्दे के लिए 9 लफ्ज आए हैं जिसमें से मसलन एक गिता है, या आप सूरत काफ में पढ़ेंगी, दूसरा गिशावा है, आप सूरत अल बकरा में पढ़ चुकी हैं, तीसरा जो है वो गुल्फ है, कालू कुलूबुना गुल्फ, ये भी पर्दे के लिए आता है ना, चौथा अकमाम है, जैसे दाना होता है ना, दाना जो है वो भूसे के अंदर छुपा हुआ होता है, फीहा फाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम, तो अकमाम ये चौथा है। पांचवा अकिन्ना है, अकिन्ना जो है इसका रूट है काफ नून नून, किसी चीज को महफूज मकाम में छुपाना, जैसे किसी बात को दिल में छुपाया जाए या कोई धूप से अपने आप को बचाए, तो अकिन्ना तुन वाहिद है जमा अकनान है। इसी तरह फिर छठा लफ्ज है जो है वो, जैसे अभी आपने मस्तूरा पढ़ा ना, तो इसी तरह सतर, ये भी सुतरा भी कहते हैं ना, नमाजी के आगे कोई चीज रखी जाए तो वो सुतरा होती है, एक रुकावट होती है जो उसके आगे से गुजरता है। और इसी तरह सातवां जो है हिजाब है और आठवां औरत है और नौवां सुरादिक है। तो बहरहाल यहाँ पे आपने 3 लफ्ज तो पढ़ लिए हैं पर्दे के लिए, नंबर 1 हिजाब, नंबर 2 मस्तूरा, नंबर 3 अकिन्नतन। कहा कि इनके दिलों पर एक ऐसा खिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते, फी आजानहिम, और इनके कानों में वक्रा बोझ है, इनके कानों में एक गिरानी है कि इनको जो है कोई बात जो है वो समझ में नहीं आती। वक्रा जो है जैसे कान के अंदर अगर जो है वो जैसे एक डार्ट लगा दी जाए, जैसे एक बोतल होती है ना उसके अंदर कोई आप चीज डाल देते हैं डार्ट, तो फिर उसके अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, इसी तरह जो कान है इन पर कोई ऐसी डार्ट डाल दिया जाए या जैसे मैल से वो भर जाए तो लोग सुन नहीं पाते ना। तो यहाँ मतलब यह है कि इनके दिल कुरान के समझने से कासिर हैं, इनके कुरान इनके कान कुरान सुनकर हदायत कबूल करने से आजिज हैं। तो ये जब अल्लाह की तौहीद से नफरत करते हैं, अल्लाह की तौहीद के बारे में, आखरत के बारे में, अल्लाह के बारे में आयात सुनकर भाग खड़े होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी नहीं चाहते कि इन्हें हदायत हासिल हो। यहाँ पे इसी का जिक्र किया जा रहा है आयत 45 में भी और 46 में भी। और हासिल क्या है कि जो आखरत पर ईमान ना लाने वाले हैं, कुरान की तिलावत उनके दिलों को नहीं बदलती, और जो ईमान लाना चाहते हैं कुरान इनके दिलों को नरम कर देता है, वो आखरत पर ईमान लाते हैं, और जो ईमान नहीं लाना चाहते कुरान की तिलावत जो है उससे और उन्हें नफरत होती है, उनके दिलों पर अल्लाह खिलाफ चढ़ा देता है, कुछ नहीं समझते, इनके कानों पर एक बोझ अल्लाह पैदा कर देता है, बकरा बोझ, कुछ नहीं उनको कान में उनके पड़ता कि क्या बात हुई, सुनी अनसुनी। वाइजा जकरता रब्बा का फिल कुरानी वहदहू, और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो, वल्लाहु अला अदबारहिम नुफूरा, तो वह नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो जो है वो तौहीद का जिक्र सुनकर भाग खड़े होते हैं। क्यों? वो तो शिर्क करने वाले हैं ना, उनको शिर्क अच्छा लगता है। वो तो कहते हैं कि जो है वो औलाद के बारे में कि पीर देता नाम रखते हैं, शिफा के बारे में वो कहते हैं फलां बुजुर्ग के पास जाने से शिफा मिलती है, फलां से उम्मीदें जो है वो मांगी जाती हैं, पूरी होती हैं। तो एक रब का जिक्र जो है वो क्या करते हैं, वल्लौ अला अदबारहिम नफूरा, तो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। नहनु आलमु बिमा यस्तमेऊना बिही, हमें खूब मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। तो यस्तमेऊना जो है इसका मतलब होता है कि जैसे जासूसी करना और खूब तवज्जो से जो है वो सुनना। तो फरमाया कि हमें खूब पता है कि ये लोग जो है कान लगाकर तुम्हारी बातों को जब सुनते हैं तो इनकी नीयत क्या होती है। नानु आलमु, हम खूब जानते हैं, बिमा यस्तमेऊना बिही, कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनती हैं वो फितना पैदा करना चाहते हैं ना। इज यस्तमेऊना इलैका, जब वो तुम्हारी बात को कान लगाकर सुनते हैं, वह इज हम नजवा, और वो आपस में सरगोशियां करते हैं। नजवा, नजवा का मतलब क्या होता है कि सरगोशी करना। तो उनका मकसद जो है वो क्या होता है कि सरगोशियां करना। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि वो कुरान को समझने के लिए या अमल करने के लिए नहीं सुनते, वो कान लगाकर कुरान को सुनते हैं और उनकी नीयत ये होती है इतराज करें, नुक्ताचीनियां करें। तो कुरान को सुनने के बाद ये आपस में सरगोशियां करते हैं। इज यकूलु ज़ालिमुना, जब ये जालिम कहते हैं कि इन तत्तबेऊना इल्ला रजुलम मसहूरा, कि ये तो एक सहरज़दा आदमी है। इन तत्तबेऊना के नहीं तुम पैरवी करते, इल्ला मगर रजुलन आदमी की मसूरा, जिस पर जादू का असर है, सहरज़दा। तो अब ये लोग भी नुक्ताचीनियां करते हैं, बातें करते हैं, और जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान ले आते हैं, तो अहले मक्का उन लोगों को कहते हैं कि तुम ऐसे शख्स का साथ दे रहे हो, तुम ऐसे शख्स पर ईमान लाए हो जिस पर जादू का जो है वो असर हो गया है, इसको जिन लग गया है। इल्ला रजुल मसूरा, उन्जुर, देखो, कैफ दरबू लकल अमसाला, कि कैसी बातें जो है ये लोग तुम पर छांटते हैं। फदल्लू, पस ये भटक गए हैं। फला यस्तती ऊना सबीला, अब इन्हें जो है वो रास्ता नहीं मिलता। अब यहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि देखो, ये अहले मक्का ने आपके लिए कैसे लकब तजवीज किए हैं, कैफ दरबू, कैसी मिसालें दी हैं, लकल अमसाल, तेरे लिए मिसालें। जैसे आपको कहते हैं कि ये एक शख्स जादू जो है, इस पर जादू हुआ हुआ है, कैसा अजीब इन्होंने आपको टाइटल दिया है, कैसा लकब दिया है। असल बात क्या है, हठधर्म है, जिद्दी है, फदल्लू, ये सिरात मुस्तकीम से भटक गए हैं। फला यस्ततीउना सबीला, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो जो ऐसे लोग होते हैं फिर अल्लाह ताला जो है उन्हें हदायत से महरूम कर दिया करता है, वो सिरात मुस्तकीम नहीं पा सकते। रही बात दुनिया की दौलत की, तो वो तो अल्लाह दे देता है लेकिन हदायत बिन मांगे नहीं मिलती। ये बात आप याद रखें कि हदायत जो है ये इतनी सस्ती नहीं है, हदायत बड़ी ही कीमती है, बड़ी ही महंगी है, और बिन मांगे अल्लाह ये हदायत नहीं देता। जब तक के लोग जो है खुद हदायत जो है वो ना चाहें, तो हदायत के लिए जो है वो चाहत जो है वो जरूरी है। अब आप देखिए कि आयत नंबर 50 है और यहां से जो है वो अकीदा आखरत का जिक्र है, तौहीद के बाद अकीदा आखरत। और अकीदा तौहीद और अकीदा आखरत जो है ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। तीन अकीदे थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर के 13 साल तक तबलीग करते रहे, अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत और अकीदा रिसालत। अब यहाँ पे फरमाया जा रहा है वकालू, और ये कहते हैं आयजा कुन्ना इजामा व रुफातन, कि जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक रह जाएंगे, इन्ना लमब उसूना खलकन जदीदा, तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। इजामन जो है अजीम, उसी से इजामन है, और ये हड्डियों को कहते हैं। और आप जो है वो पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुकी हैं कि ऐन जोए मीम हड्डी को कहते हैं, और इसी से ये लफ्ज बड़े होने के लिए, अजीम का लफ्ज बड़े को भी इस्तेमाल किया जाता है ना, कोई बड़ा हो, जैसे तुम्हारा रब जो है वो अजीम है, बड़ा है, उसके लिए भी आता है, क्योंकि अरबों के यहाँ बड़े बड़े जानवर जैसे ऊंट वगैरह उसको जिबा करते हैं, तो उसकी हड्डी के लिए अजीम का लफ्ज, और इस तरह ये लफ्ज बड़े होने के मानी में इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये कहते हैं कि जब हम हो जाएंगे, आयजा कुन्ना इजामन, के क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियां, वह रुफातन और चूरा चूरा। रुफात जो है रा फा ता, वो सीधगी की बिना पर किसी चीज का चूरा चूरा हो जाना, भूसा वगैरह जो रेजा रेजा हो जाता है, या फिर हड्डियां जो पुरानी होकर भुरभुरी हो जाती हैं, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते थे कि जब हम सिर्फ हड्डियां रह जाएंगे, बरुफातन, और हड्डियां भी मट्टी बन जाएंगी, चूरा चूरा हो जाएंगी, इन्ना लमब उसूना खलकन जदीदा, तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। तो चूंकि काफिर जो थे वो कयामत के कायल नहीं थे, मरने के बाद जीने को वो नामुमकिन समझते थे, इसलिए वो बार बार पूछते थे कि जब हम हड्डी और मट्टी बन जाएंगे, जब हमारी हड्डियां भी गल सड़ जाएंगी, तो क्या फिर हमें दोबारा जो है वो जिंदा किया जाएगा। इन्ना लमब उसूना खलकन जदीदा, तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, कूनू के तुम हो जाओ, हिजारतन और हदीदन, पत्थर या लोहा, के तुम पत्थर बन जाओ या लोहा। अब आप देखें कि पत्थर जो है वो क्या होता है, बहुत ही सख्त होता है, और लोहा, लोहा भी बहुत सख्त होता है। तो यहाँ पर जो है उनका वो जो उनका जो ये इतराज था, उसका जवाब दिया जा रहा है कि मट्टी और हड्डियों से ज्यादा सख्त चीज जो पत्थर और लोहा है, अगर तुम वो भी बन जाओ जिसमें जिंदगी के आसार पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, तो अल्लाह तब भी तुम्हें जो है वो पैदा कर सकता है। तो तुम पत्थर बन जाओ या लोहा, औ खलकन, या फिर जो है कोई और चीज, मिम्मा यकबरू फी सुदूरे को, मिम्मा उससे यकबरू, यकबरू जो है इसके मानी है कि इससे भी कोई बड़ी चीज जो तुम्हारे ख्याल में है, सुदूरे को यानी तुम्हारे सीने में है, जैसे पत्थर या लोहे की निस्बत, औ खलकन, कोई और मखलूक, कोई और चीज, मिम्मा इससे भी, यकबरू जो मुश्किल है बड़ी है, फी सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में तुम्हारे दिलों में, यानी पत्थर और लोहे से भी कोई बड़ी सख्त चीज हो जो तुम्हारे दिल में ख्याल तुम कर सकते हो, अगर तुम वो भी बन जाओ फिर भी अल्लाह तुम्हें पैदा कर सकता है। फसयकुलूना फिर अब ये कहेंगे, मैं युईदुना कि कौन हमें दोबारा पैदा करेगा। कुल कह दीजिए, अल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा जिसने पैदा किया तुम्हें पहली मर्तबा वही तुम्हें पैदा करेगा। तो इनके ये जो शुबहात है इनका आप जवाब दीजिए, फिर ये क्या करेंगे। फसयुनगिदूना, फसयुनगिदूना जो है ये आपके लिए नया लफ्ज है, मुश्किल लफ्ज है, और इसका रूट है नून गैन द्वाद, जिसका मतलब होता है कि सर हिलाना, ताज्जुब के लिए सर हिलाना या मजाक उड़ाने के लिए सर हिलाना। तो ये जो इन गदाद है इसके मानी है कि सर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ हिलाना, जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और कब इंसान ऐसे सर हिलाता है, ताज्जुब के लिए या मजाक उड़ाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फसयुनगिदूना इलैका रउसहुम कि ये अपने सरों को जो है वो हिला हिला कर पूछेंगे। फयकुलूना मता हुआ, ये कहेंगे अच्छा तो ये होगा फिर कब, बजाय इसके कि ये ईमान लाए तो सर हिला हिला कर मजाक के तौर पर पूछेंगे कि मता हुआ, ये जो कयामत होगी, ये जो हिसाब किताब होगा, जो दोबारा जिंदा करके खड़ा किया जाएगा, आखिर ये होगा कब। कुल असा अन यकूना करीबा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि करीब है, शायद, असा शायद के लिए आता है कि शायद वो वक्त जो है वो करीब ही आ लगा हो। यौम यदउकुम फतस्तजीबूना बिहमदही फतजुन्नूना इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला, वो वक्त कब आएगा जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, कौन, अल्लाह। यौम यदउकुम जब अल्लाह तुम्हें पुकारेगा, फतस्तजीबूना पस तुम जवाब दोगे, कैसे जवाब दोगे, बेहमदही अल्लाह की हम्द करते हुए, तो तुम अल्लाह की हम्द करते हुए जवाब दोगे। फतजुन्नूना और तुम्हारा उस वक्त ये गुमान होगा, इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला कि बस थोड़ी ही देर तुम इस हालत में रहे हो, कि दुनिया में मरने के वक्त से लेकर कयामत में उठने के वक्त तक इंसान की पूरी जिंदगी जो है वो इंसान को चंद घंटों से ज्यादा महसूस ना होगी। फतजुन्नूना और तुम समझोगे, इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला कि नहीं तुम ठहरे मगर थोड़ा। तो अब यहां पर अहले मक्का जो कयामत का इनकार करते थे, जो आखरत का इनकार करते थे, मरने के बाद की जिंदगी के वो मुनकिर थे, तो अल्लाह ताला ने उनके इतराजात का जवाब दिया है कि ऐसा जो है वो होकर रहेगा, और इंसान की कयामत जो है उसकी मौत के साथ शुरू हो जाती है, और इसमें कुछ भी देर नहीं है। फिर आप देखिए कि अब यहां पर जो है ये आयत नंबर 53 से 53 से जो मुसलमान हैं इन्हें जो है तालीम दी जा रही है कि अपने इखलाक और किरदार जो है इसकी फिक्र करें। अगर काफिर जो है इनको गाली गलोच करें, अगर काफिर जो है वो बद इखलाकी का मुजाहिरा करें, तो मुसलमान आपस में भी और काफिरों के साथ भी जो है वो हुस्ने इखलाक से पेश आए। फरमाया वकुल, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ले इबादी मेरे बंदों से। मुझे कुरान का ये अंदाज बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि मेरे बंदे ऐसे ऐसे और ऐसे हैं, और बहुत दिल चाहता है कि अल्लाह करे कि मैं और आप अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो जाएं। तो आपका बहुत दिल चाहता होगा ना कि कोई आपको कहे कि आप मेरी हैं। जैसे औलाद जो है अगर वालदैन उससे नाराज हो जाए तो औलाद का कितना दिल दुखता है ना, और दिल चाहता है ना कि मेरे वालदैन मुझे अपना कहें, या जो है वो आप जो है आप अपनी मलकियत का जैसे इजहार करें ना। और फिर उसके लिए क्या होता है, जैसे बच्चे के अंदर अगर बुरे सिफात होते हैं तो वालदैन कहते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा भी ऐसा करेगा, मेरा बच्चा। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी जो है वो ये गलत काम करेगी, या मेरा बेटा करेगा ये झूठ बोलेगा, या ये लिबास ऐसा पहनेगा, या बेहयाई का ये काम करेगा मेरा बच्चा। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, ऐसा होता है ना। और आप सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि मेरे बंदे, तो मेरे बंदे तो बुरे अखलाक के नहीं होते, किरदार उनका बुरा तो नहीं होता, तो वो कैसे होते हैं। वकुल इबादी यकुलुल्लती आसन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो कि जबान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो, अल्लती ही आसन, जो सबसे अच्छी हो। तो आपस में गुफ्तगू करते वक्त, खा वो घर के अंदर हो, दोस्तों में हो, काफिरों से हो, जब जबान का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे कलमात जो है वो बोले जाएं, अपनों से भी और गैरों से भी, मुसलमानों से भी और गैर मुस्लिमों से भी। मुशफिकाना और नरम लहजा जो है इख्तियार करना जरूरी है। तो पीछे आपने सूरत अल बकरा में पढ़ा था, वकूलू लिन्नासी हुस्ना, के लोगों से अच्छी तरह बात की जाए, प्यार और मोहब्बत से बात की जाए। और यहाँ पे भी जो है वो गुफ्तगू के आदाब बताए जा रहे हैं कि मुसलमान जबान के लिहाज से अखड़ नहीं होते, बदमिजाज नहीं होते, सख्त नहीं होते, बल्कि उनकी गुफ्तगू का अंदाज जो है वो नरमी का होता है। तो बदजबानी करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अब आप देखें कि आपकी जबान जो है क्या गाली गलौज करती है, क्या आप जो है वो सख्त कलामी से पेश आती हैं, क्या आप बुरे कलमात जो है वो बोलती हैं, हैं आप क्या करती हैं, कहीं गाली गलोच तो नहीं करती, कहीं बुरा भला तो नहीं कहती रहती। तो मैं भी अपना जायजा लेती हूँ, आप भी अपना जायजा लें, क्योंकि मुसलमान हमेशा अपना जायजा लेता है। दूसरों पर नजर और फिक्र करने की बजाय वो सोचता है कि मैंने क्या किया। आप मोबाइल से में गुफ्तगू में जो है वो बदकलामी, तेज कलामी, मुबालगा और फितना फसाद का जरिया तो नहीं बनती कि लोग आपसे मुतनफिर हो जाएं, लोग इस्लाम से मुतनफिर हो जाएं, लोग इस्लाम से दूर हो जाएं। कहा कि मेरे बंदे जो है ना, जब जबान से वो बात निकालें तो क्या ही आसन, बेहतरीन बात होनी चाहिए। इन शैताना यंजहु बैनहुम, बेशक ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। तो यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि शैतान क्या करता है, नजागा यंजहु, कि शैतान जो है वो फसाद डलवाता है। तो नून जे और गैन, नजगुन, इसके मानी है कि फसाद पैदा करना। और ये फसाद ऐसे भी हो सकता है जैसे कत्ल के जरिए जो है वो सोसाइटी के अंदर फसाद पैदा किया जाए, और ये फसाद ऐसे भी हो सकता है कि जो है वो ऐसे वसवसे और ऐसे बुरे ख्यालात जो हैं वो पैदा किए जाएं कि जिससे लोग जो हैं वो उनके दरमियान आपस में जो है वो फसाद पैदा हो जाए, या जैसे दिल के अंदर ऐसे वसवसे पैदा करना कि जिसके जरिए से आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए। आप ये लफ्ज पहले भी पढ़ चुके हैं, सूरत यूसुफ में आपने आयत 100 में पढ़ा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के बारे में कहा था कि नज़ग़ शैतानु बैनी व बैना इख्वाती, कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाला था, मुदाखलत की थी, और आपस में हम मेरे भाइयों के दरमियान जो हसद के जज्बात पैदा हुए, जो नफरत के, उन्होंने जो मुझे कुएं फेंका और जो कुछ वो मेरे साथ करते थे। तो ये किस किसकी शरारत थी, कि ये शैतान जो था उसने ये शरारत की। तो इन शैताना यंजहू बैनहुम, कि बेशक ये शैतान है जो लोगों के दरमियान फसाद डलवाता है। तो ये शैतान है जो ऐसे वसवसे इंसान के दिल में पैदा करता है कि आपको गुस्सा आ गया, आपने गाली देनी शुरू कर दी, और आप जो हैं वो सख्त कलामी से पेश आने लगे, बुरा भला कहने लगे। तो इस तरह जो है वो लड़ाई झगड़े का जो माहौल है ये कौन पैदा करता है, ये शैतान है जो पैदा करता है। तो ये जबान के अंदर जो बेएतदाली पैदा होती है ये शैतान की वजह से होती है। शैतान क्या चाहता है, आपस में फसाद डलवाए, भाई भाई के दरमियान नफरत पैदा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई मुसलमान की तरफ हथियार के साथ इशारा ना करे, इसलिए कि वो नहीं जानता कि शैतान इसके हाथ से वो हथियार चलवा दे और वो इस मुसलमान भाई को जा लगे, जिससे इसकी मौत वाकया हो जाए, बस वो जहन्नुम के गड़े में जा घिरे। तो शैतान जो है वो क्या करता है कि गुस्से की आग को भड़काता है, तबीयत में जोश पैदा करता है। जब आपको गुस्सा आए, जब आप गाली गलौज करने लगे, जब मिजाज में सख्ती आने लगे, तो याद रखें कि शैतान है। इन शैतान यनगज़ु बैनहुम, तो ये शैतान है जो फसाद पैदा करता है बैनहुम, इंसानों के दरमियान। इन शैतान कान लिल इंसानी अदुवम मुबीना, हकीकत यह है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो हमेशा अपने दुश्मन को याद रखना चाहिए, और वो कौन है? शैतान खुला दुश्मन है। और आप भी देखें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से जो है वो आपको फिर गुस्सा आता है, और इस तरह आप शैतान को जो है वो खुश करती हैं। तो याद रखें कि शैतान जो है वो आपका खुला दुश्मन है। तो यहाँ पे जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इखलाक, किरदार, तालीम, तहजीब और बेहतरीन जो बात करना है, ये कौन करते हैं? ये जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, और वो शैतान से बचते रहते हैं, डरते रहते हैं। अब आप देख लें कि अल्लाह को आप खुश करती हैं या शैतान को। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से खूब वाकिफ है, उसे खूब पता है कि तुम में से कौन जन्नती है, तुम में से कौन जहन्नमी है, कौन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं और कौन अल्लाह के नाफरमान है। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है। इन यशा यरहमकुम, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे। और इन यशा युअज्जिबकुम, अगर वो चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। तो खुद नहीं ये दावे करने चाहिए कि मैं बड़ी नेक हूं, मैं बड़ी मुत्तकी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। अल्लाह ताला कहते हैं, मैं तुम्हारी नियतों को, तुम्हारे अमाल को खूब जानता हूं, चाहूं तो तुम पर रहम करूं और अगर चाहूं तो तुम्हें जो है वो अजाब में मुब्तिला कर दूं। तो अल्लाह इंसान के जाहिर और बातिन, हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ है, उसे खूब पता है कि कौन दोस्ती है और कौन जन्नती। किसी इंसान को ये कहने का हक नहीं है कि फलां शख्स को अजाब दिया जाएगा और फलां को बख्श दिया जाएगा, अल्लाह बेहतर जानता है। वमा अरसलना का अलैहिम वकीला, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको लोगों पर हवालादार बनाकर नहीं भेजा है। तो नबी का काम दावत देना है, लोगों की किस्मतें तब्दील करना नबी का काम नहीं है। तो यहाँ पे मुसलमानों को ये बात बताई जा रही है कि जब नबी का भी ये मनसब नहीं है कि वो लोगों की किस्मतें तब्दील कर दे, तो तुम भी मुसलमानों जन्नत और जहन्नुम के, लोगों की जन्नत और जहन्नुम के ठेकेदार नहीं बन सकते। रब्बों का आलमु बिमन फिस समावाती वल अर्द, तेरा रब जमीनों आसमान की मखलूकात को ज्यादा जानता है। वलकद फद्दलना बादन नबीयीना अलाबाद, हमने बाज पैगम्बरों को बाज से बढ़कर मर्तबे अता किए हैं। तो बाज पैगम्बरों को बाज पर जो है वो फजीलत दी है, किसने? अल्लाह ने। और पैगम्बरों के दर्जे जो हैं वो अल्लाह ही ने बाज पर जो है वो बाज को फजीलत दी। आप तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अलाबाद, वहां भी पढ़ चुकी हैं, किसी से अल्लाह हम कलाम हुआ, कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम। किसी से जो है अल्लाह ताला ने क्या किया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो लोगों को जो है वो अल्लाह के हुक्म से, जब वो कहते थे कि जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाते थे, उनको शिफा हो जाती थी। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ताला ने जबूर अता की थी। और आमतौर पे जो बादशाह होते हैं वो बेखौफ होते हैं, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से बहुत ज्यादा डरने वाले थे। तो फरमाया कि तुम्हारा रब जो है जमीन और आसमानों की मखलूकात को ज्यादा जानता है। और पैगम्बरों में से किसके मर्तबे क्या थे, अल्लाह उसको भी ज्यादा जानता है। کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، ورنہ پیغمبر کیا تھے؟ سب بیوی بچے رکھتے تھے، انسان تھے. اب کفار مکہ رسول اللہ کو یہ کہتے تھے کہ تم ایک دنیا دار آدمی ہو، اور جو بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت بس اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں. فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور دی تھی، تو وہ بادشاہ بھی تھے اور بادشاہ ہونے کے علاوہ نبوت اور کتاب سے سرفراز کیے گئے تھے. قل ادعو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم پکارو، الذین، ان معبودوں کو جن کو زم تم سمجھتے ہو، من دونی اللہ کے سوا، یعنی جن کو تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو ان کو پکار کر دیکھ لو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو فلا یملکون، تو یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ ملکیت نہیں رکھتے. کشف ہٹانا، دور کرنا، کہ یہ معبود جو ہیں یہ دور کر دیں، ادرہ تکلیف کو، انکم تم سے، تو تمہارے معبود جو ہیں تمہارے پر جو بیماری ہے، جو مشکل ہے، جو تکلیف ہے، اس کو تم سے دور نہیں کر سکتے. ولا تحویلا، اور نہ ہی اس تکلیف کو، اس مشکل کو یہ لوگ جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں. تو اس آیت میں جو ان کے اپنے معبود تھے ان کی بے بسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ ولیوں کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں، پتھروں کے بتوں کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری قسمت کو جو ہے وہ بگاڑ بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں. تو کہا ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. اب یہاں پر جو ہے ایک بڑی اہم حقیقت جو ہے یہ بتائی گئی ہے. فرمایا کہ اولئک الذین یدعون، کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، فرمایا کہ اپنی مشکل کشائی کے لیے یہ جن کو پکارتے ہیں. جو شرک کرنے والے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی مشکل میں سے نکلنے کے لیے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ دوسری ہستیوں کو جو ہے وہ عبادت میں ساتھ شامل کرتے تھے. تو کہا کہ شرک کرنے والے جن کو پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون، کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کے پاس جو ہیں وہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. ایہم اقربو، کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کا امیدوار بن جائے، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے یہ خوف زدہ ہیں. تو ان الفاظ میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے معبود جو ہیں، جیسے فرشتے یا انسان جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی دعائیں سن سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی بگڑی کو بنا سکتے ہیں، کہا کہ وہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے معبود خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ان کے معبودوں کا حال کیا ہے؟ نمبر ایک، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ اللہ کے حضور رسائی کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. نمبر دو، ایہم اقربو، کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، کہ اللہ سے کیسے قریب ہوں، ویرجون رحمتہ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. نمبر تین. نمبر چار، ویخافون عذابہ، اور وہ اللہ کے عذاب سے جو ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح اپنے معبودوں کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو کہا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شامل سمجھتے ہیں وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، جیسے فرشتے بھی، اور اسی طرح یہ جنات کو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، یا پھر जो है ये नबियों को कहते थे कि ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं, हमारी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है क्या कि यहाँ पे जो शिर्क करने वाले हैं उनके अकीदे शिर्क की नफी की जा रही है। इन्ना अजाब रब्बी का काना माजूरा, बेशक तुम्हारे रब का अजाब है ही डरने के लायक। माजूरा, हा दाल रा इसका रूट है, खौफ के लिए आता है, और माजूरा डरने की चीज, और जो है वो काबिले खौफ चीज। यहाँ पे कुफ्र और शिर्क करने वालों को अल्लाह के अजाब से जो है वो डराया जा रहा है कि लोगों तुम अल्लाह के अजाब से डरो, इसलिए कि अल्लाह का अजाब जो है ही डरने के लायक चीज। मतलब ये है कि वो जब वो खुद आबिद हैं, ये सब इबादत करने वाले हैं, तो तुमने माबूद कैसे उनको बना लिया? जब ये खुद मोहताज हैं तो तुम्हारी मुश्किल को कैसे दूर कर सकते हैं? तो क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? तो अल्लाह का अजाब जो है वो शिर्क करने वालों पर आकर रहेगा। व इमिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा कबला योमिल क़यामती औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा। कहा ये, और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम कयामत से पहले हिलाक ना कर दें या सख्त अजाब ना दे दें। मतलब क्या है कि हर एक को मरना है और किसी को भी जो है वो हमेशगी हासिल नहीं है। इम मिन करियतिन, और नहीं कोई बस्ती या गांव इल्ला मगर ये कि नहनु मोहलिकुहा कि हम उसको हिलाक करने वाले हैं, कबला योमिल कयामत ये कयामत से पहले, ओ मुअज़्ज़िबुहा या हम उसे जो है वो अजाब देने वाले हैं। कैसा अजाबन शदीदा, सख्त अजाब। अगर वो नाफरमान है तो सख्त अजाब आने वाला है। कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, और ये अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है, नविश्ताए इलाही में ये बात लिखी हुई है कि किन पर उनकी नाफरमानियों की वजह से अजाब आएगा और कौन जो है वो आफत के जरिए हिलाक किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, काफिरों में कभी तो दुनिया में अजाब आ जाता है और आखरत का अजाब जो है वो इसके अलावा होगा। तो ये अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला नुक इल्ला अनकदबा बिहल अव्वलून, और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका। वमा मनाना, और नहीं मना किया हमको, अन नुरसिला बिल आयाति कि हम भेजें आयात को, निशानियों को। तो असल में अहले मक्का क्या कर रहे थे, मोजात का मुतालबा कर रहे थे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो लोगों ने मोजात का मुतालबा किया था तो हमने मोजे क्यों नहीं भेजे, किस चीज ने हमें रोका। तमाम मना ना नुरसिला बिलायाती, और नहीं रोका हमको और नहीं मना किया हमको कि हम भेजते निशानियों को, मोजात को, इल्ला कज्जबा बिहल अव्वलून, मगर इसकी वजह ये थी कि पहले लोगों ने, पहली कौमों ने जो है वो मोजात को झुठलाया था। इल्ला मगर ये नहीं, अनकज़बा के झुठला चुके हैं, बिहा इन मोजात को, अल्लावलून पहले लोग, तो पहली कौमें जो थी वो निशानियां मोजात झुठला चुकी हैं। तो काफरों का मिजाज एक जैसा होता है, कुफर करने वाले मुतालबात करते हैं, जब मोजे पूरे किए जाते हैं तो फिर उनका इनकार कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कहा, वह आते ना समूदन नाकता, हमने समूद को अलानिया ऊंटनी ला कर दी थी। हमने समूद को ऊंटनी दी, कैसी थी, मुबसिरतन अलानिया, वो ऐसी ऊंटनी थी कि सबको नजर आ रही थी, मुबसिरतन। मुबसिरतन जो है इसके मानी है कि बिल्कुल खुली आंखों से देखी जाने, देख सकते थे लोग, लोगों को समझाने के लिए दी थी, एक इबरत थी, मुबसिरतन इबरत थी, बसीरत हासिल करने के लिए थी। फजलमू बिहा, मगर उन्होंने इस पर जुल्म किया, और जुल्म करने से मुराद क्या है कि उन्होंने ऊंटनी की कोचे काट डाली, उन्होंने ऊंटनी को तबाह किया, उसे जो है वो कत्ल कर दिया। फमा नुरसिला बिल आयाती इल्ला तखवीफा, हम निशानियां इसलिए भेजते हैं कि लोग उन्हें देख कर डरे। तो मौजा दिखाने का मकसद क्या होता है कि लोग उन्हें देख कर जो है वो डरे, खबरदार हो जाए, कि वो जान लें कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम क्या हो सकता है। वाइज कुलना, और जब हमने कहा لکا آپ کو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو کہ ہم نے تم سے کہہ دیا تھا ان ربا کا فحاط بالناس کہ تمہارے رب نے ان کو گھیر رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے لوگ جو ہے وہ بچ نہیں سکتے, تو نافرمان جو ہیں پھر اللہ ان کو جو ہے وہ گھیر لیتا ہے. تو اہل مکہ کیا کر رہے تھے, معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے. تو یہ بتایا کہ اگر معجزات کا یہ مطالبہ جو کر رہے ہیں اور اگر ان کے معجزات پورے کر دیے گئے, ان کا معجزات کی فرمائش پوری کر دی گئی اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے. مطلب کیا ہے کہ مخالف جو ہیں اللہ نے ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ ان کا احاطہ کر رکھا ہے, اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر رکھا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ پھر فرمایا اور یہ جو کچھ ہم نے تم کو دکھایا ہے, آپ نے سورت بنی اسرائیل میں شروع میں آپ نے جو ہے وہ معراج کے واقعے کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے تو یہ کیا تھا, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اور یہ جو کچھ ہم نے ابھی تمہیں دکھایا ہے, اللہ تی ارینا کا جو ہم نے تجھے دکھایا یہ واقعہ معراج, الا فتنتن نہیں یہ مگر فتنہ, بناسی لوگوں کے لیے. تو یہ معراج کا واقعہ جو تھا یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا کیونکہ اہل مکہ نے اس کا جو ہے وہ انکار کیا. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور اس درخت کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ایک فتنہ بنا دیا. کون سا درخت؟ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. تو یہاں پر جو ہے شجرت الملعونہ سے مراد کون سا درخت ہے, کہا یہ زقوم کا درخت ہے, یہ دوزخ کی تہہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا. لعنت کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. اور چونکہ یہ لعنت زدہ لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, یہ جہنم کی تہہ میں ہے, جہنمی جب بھوک سے تڑپ کر منہ ماریں گے تکلیف اٹھائیں گے تو دوزخیوں کو کہا جائے گا کہ یہ زقوم کا درخت کھائیں. جب وہ اس درخت کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگے گی جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو. آپ سورت دخان آیت 43-46 میں اس کو پڑھ سکتی ہیں اس درخت کے بارے میں. تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ معجزات مانگتے ہیں, تو جو ہے وہ معراج کا واقعہ بھی معجزہ ہے لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گیا. اسی طرح یہ جو درخت ہے درخت زقوم کا جس کا قرآن میں ذکر ہے جو جہنم کی تہ میں اگے گا تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ فَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں, ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا پس نہیں زیادہ کرتی ان کو, یعنی ان کا جو انکار ہے نہیں جو ہے اضافہ کرتا ان کے لیے, إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا مگر بڑی سرکشی میں, اور ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے کہ جتنا ان کو سمجھاتے جاتے ہیں اتنا یہ انکار میں جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے درخت جو زقوم کا ہے اس کا بھی انکار کیا, اس کا بھی مذاق اڑایا. آپ سورۃ صافات میں پڑھیں گے اس کے بارے میں. تو اللہ جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جہنم کی تہہ میں جو ہے وہ وہاں پہ درخت اگے گا تو کافر ہنستے تھے کہ جہنم میں تو آگ ہوگی, آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے تو آگ کے اندر درخت کیسے پیدا ہوگا. تو اللہ کی مرضی ہے نا, چاہے جو ہے وہ درخت مٹی میں اور پانی سے پرورش پائے چاہے تو وہ آگ سے جو ہے وہ پرورش پائے. تو اللہ کی مرضی ہے جیسے چاہے کرے. تو جو رب جو ہے جہنم کی تہہ میں آگ میں درخت پیدا کر سکتا ہے تو वो चाहे तो एक रात में आप तवील सफर करके आसमानों पर जाकर वापस भी आ सकते हैं। तो वाकया मेराज और जकूम का दरख्त जो था, ये है एक मोजा, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका इनकार किया, और इस तरह इनका इनकार, इनकी सरकशी, इनकी तुगयानी जो है, इसमें इजाफा ही इजाफा जो है वो होता चला गया। तो सूरत बनी इसराइल की ये आयात जो है हमें ये पैगाम देती हैं कि हम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करें, हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं, हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन्हें अल्लाह कहता है कि ये मेरे बंदे हैं, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। तो इखलाक और किरदार में, मईशत और मुआशरत में, अकीदे में, जिंदगी के हर मरहले में अल्लाह ताला हमें तौफीक दें ताकि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं, और जो है वो हमारी सीरत, हमारा किरदार, हमारा जाहिर और हमारा बातिन, सब कुछ जो है वो कुरान के रंग में जो है वो रंगा जाए, हम पूरे के पूरे इस्लाम में जो है वो दाखिल हो जाएं, अपने पांव की एड़ी से लेकर और सर के जो बाल हैं उनकी चोटी तक, चोटी से एड़ी तक, जिंदगी के सारे कदमों में, जिंदगी के तमाम मामलात में, जिंदगी के जो है तमाम फैसलों में हम जो है वो रहमान का इत्तबा करें, और शैतान जो है वो इससे बचें, शैतान की जो चालें हैं हम इससे जो है वो बचें, और इसके लिए हमें जो है वो सब्र भी करना है, शुक्र भी करना है, और अतात करनी है। और अतात कैसी करनी है, इस्तकामत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और जो है वो डरना नहीं है, दबना नहीं है, परेशान नहीं होना, और क्या करना है कि बस जो है वो अल्लाह की बंदगी के लिए जो है हम सबको अतात करनी है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन मुसलमान बनाए, हम सबसे राजी राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।